श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् डीसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा अध्याय 7 श्लोक संख्या 18 उदारा सर्व एव ते वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा तमेवानुत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेत व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपनी ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रखकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चय रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होते हैं। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाते हैं तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति में करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं साधव हृदय मार्गम साधु नम हृदय स्वहम अनन्यते न जानती नाहम तेभ्यो मनारपी। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहते हैं। यानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। तो इस गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो श्री कृष्ण का धर्म भक्त है अर्जुन को संक्षेप में सभी आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। तो इसके पहले ये श्रीमद् भागवत का सप्तम अध्याय है और इसके पहले श्री कृष्ण आत्मा की स्थिति और कैसे एक जीव जो इस बाधा अवस्था में संसार में है, कैसे एक जीव तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं और कैसे बद्ध जीव कर्म फल के अनुसार दूसरे प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में श्री कृष्ण काम के बारे में कुछ व्याख्या की कि यदि कोई देवगण की आराधना करते हैं तो देवगण परस्पर व्यवहार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो कर्म के बारे में, कर्म योग और कर्म का त्याग करना, ये दोनों के बारे में श्री कृष्ण कुछ बोल रहे हैं। और अभी इस अध्याय में श्री कृष्ण विशेषकर भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते हैं। और एक्चुअली गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या मानना चाहते थे, गीता में कर्म, ज्ञान, योग, संन्यास, त्याग, तो ये सब विषयों की बात है। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण तो ये सभी विषय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, किंतु श्री कृष्ण का वास्तविक उद्देश्य केवल शुद्ध भक्ति प्रचार करना है। श्री कृष्ण काम, ज्ञान, योग इत्यादि ये सब विषय के बारे में कुछ बोले भक्ति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, कि काम, ज्ञान, योग ये सब करना है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण असुरों की प्रवृत्ति एक श्लोक में बोलते हैं कि चार प्रकार व्यक्ति है जो कभी भी अवसर मिलके भी तो कभी भी राजी नहीं होते हैं मेरे चरण पर शरण लाना। नमाम दुष्कृषिण मूढ़ा प्रपद्यंते नरहतमा माया प्रवृत्त ज्ञान असुरम भाव आश्रिता। जो असुरिक भाव संबंध व्यक्ति तो ऐसे लोग तो कभी भी श्री कृष्ण के चरण में शरण नहीं लगते। और चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो भक्ति शुरू करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः जना सुकृतेन अर्जुन अर्थ जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी चार्थार्थाश्रितः। चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो भक्ति का आरंभ करते हैं, अर्थात इस भौतिक संसार में सब किस लिए यहां पर है, सब इच्छा द्वेष समूह द्वंद्व मोहेन भारत सार्वभूतानि समूह सार्गे यान्ति परान्तः, सब भगवान को द्वेष करते हैं और उसका फल से सब की अनेक असंख्य अपर्याप्त भौतिक इच्छाएं और इससे भवबंधन होते हैं। तो इस भौतिक संसार में सब जीव संघर्ष करते हैं, ये सभी अपने इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, किंतु इस भौतिक संसार ऐसा है कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। और पूर्ण होने के भी लोग संतुष्ट नहीं होते। जैसे कि एक व्यक्ति की इच्छा हो सकते हैं, मैं करोड़पति होना चाहता हूं, तो करोड़ जो सब ऐसे चाहते हैं, सब लगभग सब ज्यादा पैसा चाहते हैं, सोचते हैं कि यदि मैं करोड़पति होऊंगा तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। किंतु हम देखते हैं कि करोड़पति अनेक है, एक नहीं है, अनेक है। दो के ज्यादा है, इतने ज्यादा नहीं है, आप सब करोड़पति नहीं है, लेकिन करोड़पति भी संतुष्ट नहीं होते। यदि एक करोड़ है तो सोचते हैं तो खाली एक करोड़ है क्यों, दो करोड़ चाहिए, और यदि दो करोड़ मिलते तो और असंतुष्ट होते कि तीन करोड़ चाहिए, तो कोई कभी भी संतुष्ट नहीं। तो सब करोड़पति होना चाहते हैं, तो जो नहीं मिलते तो हताश, और जो मिलते वो भी हताश, तो ये काफी नहीं है। तो ये भौतिक संसार, तो इसी अवस्था में यदि कोई सोचते कि हाँ तो इतना सा प्रयास किया, नहीं एक्चुअली चार प्रकार के व्यक्ति है, एक है अर्थार्थी, पैसा मांगने वाले, संस्कृत में अर्थार्थी बोलते हैं, हिंदी पैसा मांगने वाले, पैसा 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 क्यों, डॉलर डॉलर डॉलर। तो एक प्रकार डॉलर मांगने वाले हैं, जो डॉलर प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, हम कि भगवान मैं सोना या सोच रहा था कि आप सबसे बड़ा धनी है, तो आपके पास काफी है तो मुझको कुछ दो, मुझको भी चाहिए। और एक प्रकार का व्यक्ति है जो देखते हैं कि ज्यादा ऐसे है तो पैसा मिलने भी हम असंतुष्ट रहते हैं, और पैसा नहीं मिलने भी हम असंतुष्ट रहते हैं, देखते हैं कि पूरा जगत की स्थिति वैसे, हम हमेशा सुख के लिए अनेक प्रयास करते फिर भी केवल दुख मिलते, तो वो ज्ञानी लोग अर्थ जिज्ञासु अर्थ आदि अर्थ, इसका अर्थ है, ये शब्द का अर्थ है, अर्थ मतलब जो दुखी है, भगवान वो दुखी हो तो दुख से मुश्किल बचा, ये मतलब ऐसा का अभाव वो एक प्रकार का दुख है, और दूसरे अनेक प्रकार दुख है, विशेषकर आज का यदि हम प्रचार करते हैं, प्रचार मतलब लोगों के बीच में जाना और ऐसे पूछना कैसे है, जैसे एक पुस्तक विषय भगवद गीता जाता हो, तो यदि हम जनसाधारण के बीच में ऐसा प्रचार करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, तो ऐसा होगा हम देखेंगे कि सभी घर में सभी लोगों का बहुत समस्या है, ऐसे आप भी हो डॉक्टर भी, हाँ हाँ डॉक्टर भी जानते हैं, सब लोग डॉक्टर के पास रहते हैं, और ऐसा तबीयत ठीक नहीं है वो एक प्रॉब्लम है, और मानसिक बहुत चिंता है, सभी लोग की बहुत चिंता है, एक घर में वो एक वो फैमिली का एक लड़का ड्रग एडिक्ट है, और दूसरे घर में वो तो एक भाई दूसरे भाई को पूरा चीटिंग किया और पूरा पैसा लिया, और दूसरे घर में वो एक संतान का वो इतना स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है कि पूरा फैमिली का पूरा पैसा नष्ट हो गया ट्रीटमेंट में, फिर भी ठीक नहीं होते, और दूसरे घर में वो बाप का हार्ट प्रॉब्लम है, सभी घर में सभी लोगों का बहुत बहुत समस्या, ये आज प्रगति युग की स्थिति है। तो जो दुख में सोचते हैं कि और क्या करूं, काफी प्रयास किया फिर भी अनेक अनेक समस्याओं में, अभी क्या करूं, तो भगवान के पास जाना है। तो अर्थ दुख में भगवान का मंजन करते हैं, अर्थ जिज्ञास। और जो मतलब ज्यादा भक्ति के लिए ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ ऐसे जिज्ञास होते हैं, उसको पसंद है, कृष्ण भक्ति हाँ अच्छी नहीं दिन करो। और एक प्रकार भक्त ज्ञानी तो पूरी जगत की स्थिति देख के निर्णय करते हैं या विचार करते हैं कि पूरी जगत की स्थिति दुखमय है और एक भरोसा है भगवान। तो इस श्लोक में, आज का श्लोक जो हम मानते हैं, इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी लोग जो मेरी भक्ति में आते हैं तो सभी उदार है। उदार अर्थात विशाल हृदय वाले, सब क्या लोगों की बुद्धि उदारता बहुत कम होते, सब तो केवल खुद के लिए सब कुछ करते हैं। प्रभुपाद व्याख्या की है कि लोग बोलते एक आदमी तो एक लड़का एक लड़की को बोलते आई लव यू, लेकिन एक्चुअली वो लड़की को प्रेम नहीं करते तो उसको भोग करना चाहते। वो लड़की के लिए ही कुछ एक्चुअली दिल से कुछ नहीं, वो चाहते है उसको भोग करना, इससे बोलते आई लव यू। उसका उद्देश्य नहीं है वो लड़की की सेवा, मतलब आई लव यू और उसको कुछ भोग देना है, कुछ ऐसा कुछ उपहार देना है, लेकिन एक्चुअली हमेशा सोचते कैसे उसको भोग करना। तो भक्ति में ऐसी भावना नहीं होती। भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना अहित की, जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती। तो आरंभ में जो भक्ति करते हैं अर्थार्थी, अर्थ मतलब जो भक्ति का शुरू करते हैं, तो प्राथमिक अवस्था में भगवान से कुछ चाहते हैं, भक्ति करते हैं किंतु पैसा चाहते हैं या समस्याओं का समाधान चाहते हैं। फिर भी वो भावना है कि ये मेरा प्रभु है, प्रेम का शुरू होता। किंतु श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये सभी प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है। एक्चुअली भक्ति में शुद्ध भक्ति में कर्म और ज्ञान नहीं होना चाहिए। अनेक बार सुन कि कर्म और ज्ञान शुद्ध भक्ति में ये दोनों वर्जित है, तो किसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मन, ज्ञानी मेरे इस चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरे सबसे प्रिय है। तो कर्म और ज्ञान उपेक्षित है, क्यों? मतलब कर्म जब हम बोलते हैं कर्म और ज्ञान भक्ति में नहीं होना चाहिए, यही अर्थ है कि कर्म मतलब वो भावना कि मैं खुद का हाथ से काम करता हूं और उससे फल मिलेगा, या हम कर्म कांड की विधियों पालन करते हूं, जैसे हम स्वर्गवास प्राप्त करेंगे तो वो कर्म कांड वो उपेक्षित है। और ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान उपेक्षित है? वो ज्ञान जिसमें ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान योग सोचते हैं कि ब्रह्मास्मि अहम, मैं भगवान हूं, या हम परम सत्य की ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो वैसे ज्ञान उपेक्षित है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति कर्म और ज्ञान ही है। भक्ति क्या है? मंदिर साफ करना, भगवान के लिए भोग तैयार करना, भगवान की आरती करना, तो वो सब कर्म है ना, कुछ कर्म होते हैं ना, लेकिन वो साधारण काम नहीं है, वो भक्ति है, वो कृष्ण के लिए काम है, तो वो काम करना चाहिए। लेकिन वो काम मैं काम करता हूं जिससे मैं खुद फल प्राप्त करूं और मैं वो फल भोग करूंगा, तो ऐसे काम भक्ति में नहीं होना चाहिए। और ज्ञान, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, और ज्ञान से आपने ज्ञान का वो ज्ञान का बल से मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वो ज्ञान भक्ति के विपरीत होते हैं। क्योंकि भक्ति में भावना क्या है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की कृपा के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की कृपा पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन भक्ति में एक ज्ञान भी है। भक्ति क्या है? भगवान को प्रेम करना। तो कैसे भगवान को प्रेम करना यदि हम नहीं जानते भगवान कौन और भगवान कैसे भगवान है? तो इसलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भक्ति शास्त्र, गीता, श्रीमद् भागवत, जैसे कि उससे हम ज्ञान मिलेंगे। प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण को प्रेम करने, तो किस लिए कृष्ण को प्रेम करें? हम भाई बहनों या अपनी पत्नी या पति, माँ बाप, ये सब का प्रेम कर सकते, तो कृष्ण प्रेम उसमें क्या है विशेष? तो हम सभी लोगों को प्रेम करते हैं, तो किस लिए कृष्ण का प्रेम करना? कृष्ण और किस लिए सर्वधमान परित्याज्यं मामेकं शरणं, केवल श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहिए। तो क्यों? क्यों कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए? और किस लिए हम बोलते हैं कि ये सब भौतिक स्नेह भवबंधन का कारण है और वो वास्तविक प्रेम नहीं है? तो ये सब समझने के लिए शास्त्र पढ़ने चाहिए कि कृष्ण भगवान है, सच्चिदानंदमय है, और कृष्ण के असंख्य दिव्य गुणों है जिससे वे सबको आकर्षण करते, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है, भगवान की दिव्य गुणों है। तो इसलिए आत्मा, जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण को प्रेम करना। तो ये सब समझना चाहिए और ये सब भक्ति कैसे करना है, तो सब कुछ शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो भक्ति में जरूर है ज्ञान है, तो यदि ज्ञान नहीं होते हैं तो हम नहीं मालूम नहीं होगा कि भगवान कौन है, किस लिए उनकी भक्ति करना चाहिए और कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान वो प्रयास कि ज्ञान से मैं मुक्त होऊंगा और ज्ञान से समझ लूंगा कि मैं स्वयं भगवान है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो देखते इतने पंडित है ब्रह्मवादी पंडित, तो हजार हजार श्लोक जानते हैं और संस्कृत पंडित भी है, तो एक परिप्रेक्ष्य से वो पंडित है ज्ञानी है, लेकिन ऐसे पंडित का क्या सिद्धांत है कि सभी शास्त्र पढ़ने से हम समझते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं और भगवान का कोई व्यक्ति नहीं है, वो सभी आत्मा एक है। तो वो ज्ञान मार्ग से ऐसा कुसिद्धांत अपसिद्धांत प्राप्त होते हैं, तो उसी भक्ति में वो ज्ञान उपेक्षित। एक्चुअली वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान है कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद में प्रकाश, तो यही ज्ञान है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी वास्तविक ज्ञानी ज्ञानी जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका दास हूं और जीवन का एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, अहितु की सेवा जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रखते। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी भक्तों में ज्ञान ही मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भक्त जो ज्ञानी है जिसके पास भगवत तत्व विज्ञान है, तो भक्ति नहीं करते हैं कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न करने के लिए, और भक्ति नहीं करते हैं दुख से बचाने के लिए, भक्ति करते शुरू से ही भक्ति करते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और ऐसा भक्त बहुत तुरंत तुरंत ही शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि शुरू से ही उसका उद्देश्य है। जो भक्ति करते हैं और सोचते हाँ मैं भी बाबा करूंगा कीर्तन करूंगा, लेकिन सोचते कि ये सभी करने से भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो भक्ति करते हैं लेकिन एक्चुअली वो भक्त का उद्देश्य अलग है, वो भावना अलग है। तो इसलिए तो वो शुद्ध भक्ति इतना तुरंत नहीं मिलती। एक्चुअली कोई भी उद्देश्य के लिए भी यदि हम भक्ति करेंगे और यदि हम शुद्ध भक्तों की संगति मिलेंगे, तो वो शुद्ध भक्तों का संग का प्रभाव से हम भी वो शुद्ध भक्ति की भावना मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अनेक जो भक्ति करते हैं एक भौतिक इच्छा पढ़ने के लिए, और वो भौतिक इच्छा पढ़ने नहीं होते हैं और भक्ति भक्ति को वर्जन करते सोचते कि भक्ति की और लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञानी होना चाहिए. एक्चुअली जो भगवत तत्व विज्ञान मिलते हैं जानते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है और ये सब मैं करोड़पति होऊंगा या मैं फेमस होऊंगा, मैं फिल्म स्टार होऊंगा, मिस वर्ल्ड होऊंगा, तो ये सभी इच्छा निरार्थ बेकार है. तो जीवन का एक ही उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना. किंतु जो जिसका हृदय में वो भावना की उत्पत्ति नहीं हुई तो ये सब गीता भी पढ़ सकते, नाला भी कर सकते, लेकिन ये सब नहीं समझ. तो इसलिए भक्ति में, शुद्ध भक्ति में, जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं तो लोगों को यही प्रचार करना चाहिए कि पहले सोचिए, विचार करो, इस भौतिक जगत दुखमय है. यही प्रचार लोगों को करना चाहिए. शुरू में हम लोगों को बोल सकते हैं कि माला करो, जो भी अवस्था में हो माला करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कम से कम एक बार मौका. लेकिन धीरे धीरे लोगों को बताना चाहिए, देखो भाई ये जगत की क्या स्थिति है, आप पूरा जीवन में संकाश करते हैं और उससे क्या फायदा हुआ, आप करोड़पति होने के भी उससे क्या फायदा होगा. तो मारण का समय क्रोपाति और रिक्शा वाला तो एक ही अवस्था में, और एक्चुअली क्रोपाति तो ज्यादा अवसर मिलते है ज्यादा पाप करने, तो क्रोपाति तो क्रो पाप करने वाले है, तो रिक्शा वाला भी पापी, लेकिन इतने ज्यादा पाप नहीं कर सकते. तो इसलिए रिक्शा वाला तो पाप में केवल लखपति है और क्रोपति तो क्रो पाप करने वाले है. तो क्रोपति लखपति या कुछ भी नहीं पाती होने के लिए तो सब मर जाते हैं और उसके बाद पुनर्जन्म होते हैं, तो यही दुखमय है. तो एक्चुअली सब लोग ये बात सुनना भी की कोई इच्छा नहीं है और सुन के भी वो नहीं समझते, समझने की शक्ति नहीं है. बुद्धिमान लोग भी, शिक्षित लोग भी ये सब नहीं समझते. बहुत सरल बात है, स्पष्ट बात है कि जगत दुखमय है, सब मार जाते हैं और जीवन में भी मर जाने के पहले बहुत बहुत दुख होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ये सब नहीं समझते. क्यों? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते. ये महाभारत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि जिनके स्वल्प पुण्य है, कम पुण्य होने वाले लोग, तो ऐसे लोग का विश्वास नहीं होते हैं भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद में. वो सोचते हैं कि ये दाल चावल है और हम घर में ही बनाते हैं और मंदिर में और या आपका घर भक्ति घर में बनाते हैं, तो हम बनाते हैं आप बनाते हैं और क्या फर्क है, ये राइस दाल है वो भी राइस दाल है, और आप बोलते हैं ये प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद, लेकिन वो साधारण दाल भात, तो महाप्रसाद को विश्वास नहीं करते। एक्चुअली देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हम महाप्रसाद प्रसाद वो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करते दूसरे रूप में, जैसे कि बहुत दूसरा धर्म के लोग हैं जो प्रसाद ग्रहण नहीं करते। यदि हम देते हैं तो हाँ, हम नहीं लेंगे, दूसरे धर्म है, मतलब ऐसे तो प्रसाद नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? यदि सोचते हैं कि वो एक लाडू, हम लाडू प्रसाद, तो यदि लाडू है तो लाडू है। यदि सोचते हैं कि कोई कृष्ण नहीं है और ये लाडू जो हम मंदिर में भगवान को अर्पण करते हैं, तो कोई कृष्ण नहीं है, मूर्ति तो कुछ नहीं है, ऐसे लोग सोचते, तो प्रसाद भी कुछ नहीं है। तो एक हमारे ख्याल में ये प्रसाद है, तो आपका ख्याल में तो एक साधारण लाडू है, तो उसको ग्रहण नहीं करते क्यों? लाडू अच्छा नहीं लगते, अच्छा लगता है, लेकिन प्रसाद ही लाडू नहीं लगते। तो एक्चुअली वो चिन्ह है कि वास्तव में वो स्वीकार करते यही प्रसाद है, स्वीकार करते लेकिन निंदा करते नहीं, हम नहीं लगते। तो महाप्रसाद गोविंद, गोविंद को विश्वास नहीं करते, जैसे कि एक महात्मा थे वो भारत की स्वाधीनता का संघर्ष का समय, महात्मा एक महात्मा परबंदस है जो आत्मजीवनी में लेकर कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि कृष्ण ऐसा व्यक्ति कभी था, महात्मा। और कृष्ण गीता में बोलते महात्मा नास्तु मां भारत दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत्यनन्य मनस ज्ञात्वा भूतानि माश्रिता। लेकिन वो कहते हुए महात्मा बोलते हैं कि कोई कृष्ण कभी नहीं था, मैं विश्वास नहीं करता। तो गोविंद को विश्वास नहीं करते और रोज भगवद गीता पाठ करते, लेकिन कि कृष्ण श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच, और जैसे बड़ा भक्त गीता पाठ करते, लेकिन कि कृष्ण जो गीता बोलने वाले हैं उसको विश्वास नहीं करते। जो कृष्ण जो बोलते हैं तो किस लिए विश्वास करते हैं? तो महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण है, मतलब भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र। और वैष्णव है, वैष्णव आपको विश्वास नहीं करते, वैष्णव कम साधारण व्यक्ति, स्वल्प पुण्यवतम राजन, इसका पुण्य सुअल्प बहुत कम है, ये सब को विश्वास नहीं करते। तो विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कई व्यक्ति है जो बोलते हैं मैं किसी को और कई वस्तु को विश्वास नहीं करते, मैं सब कुछ अविश्वास करते। तो वो बात जो बोलते हैं वो विश्वास करते हैं, अपनी बात को विश्वास करते, मैं किसी को विश्वास नहीं करता हूं, तो खुद को विश्वास करते, खुद की बात को विश्वास करते। सब स्वप्न है, कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है, ऐसा कोई बात नहीं। तो भगवान को विश्वास करते और किसी को विश्वास नहीं, मतलब कोई विश्वास नहीं है। तो मत खाओ, चाल चाल डाल में कोई विश्वास नहीं है, उसमें विष हो सकते, किसलिए उसको विश्वास करते हम? सबका विश्वास है, विश्वास है कि यदि हम काम करते तो किसलिए विश्वास है कि महीना के अंत में कितना मिलते हैं, 10,000 दिरहम मिलते हैं, इतना नहीं, पैसा इतना ज्यादा नहीं मिलते, 1,000 यदि ऐसा विश्वास नहीं था तो काम नहीं करते, तो वही विश्वास है, तो सबका विश्वास है। तो उच्च विश्वास होना चाहिए कि इस भौतिक संसार के ऊपर मालिक है, तो वो अंधविश्वास नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे कि दुबई में हम इधर उधर जाते हैं तो जरूर विश्वास, दुबई का महाराज है शेख भक्त और सरकार भी है, तो हम सरकार को नहीं देखते, लेकिन विश्वास है कि सरकार ही है, तो यदि सरकार नहीं था तो कैसे सब कुछ चलते? तो हम विश्वास करते हैं कि सरकार है और शेख है, तो नहीं देखते लेकिन विश्वास है, तो वो अंधविश्वास नहीं है। तो उस प्रकार भी हम देखते हैं पूरा जगत है, जगत चलते हैं, तो जरूर सरकार भी है और प्रधानमंत्री भी है, तो विश्वास होना चाहिए कि जरूर ही भगवान की अस्तित्व है। लेकिन केवल यही भावना कि मैं भगवान को विश्वास करता हूं तो वो ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद बोले कि केवल आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को विश्वास करता हूं, तो वो भावना अच्छा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, अल्लाह गॉड इज ग्रेट। प्रभुपाद बोले कि समझना चाहिए भगवान कैसे महान है, वो समझना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो भगवान कैसे भगवान है, और हम और भगवान हम दोनों के बीच में क्या संबंध है, और कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए, और किस लिए भक्ति करनी चाहिए। यदि हम सोचे हाँ हम भक्ति करेंगे और भक्ति करने से भगवान से हम बहुत सुविधा होंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे, तो वो वास्तविक भक्ति नहीं है। तो कोई भक्त भक्ति कर, सब जो भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हैं, माला करते हैं, आरती इत्यादि, लेकिन जो ज्ञानी है जो भक्ति करते हैं इस ज्ञान के सहित कि हम भक्ति करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो ही प्रेम है, और ऐसी भक्ति करने से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं जो पूरा दिव्यानंद का आधार है। और दूसरा भक्त जो एक ही माला करते हैं कीर्तन में अंश ग्रहण करते हैं इत्यादि, लेकिन उसका हृदय में यही उद्देश्य है कि मैं भक्ति करता हूं और उससे भगवान से कुछ प्राप्त होना चाहिए, भक्ति करता हूँ और इससे मैं क्रोपति बन जाऊंगा। तो दोनों भक्ति करते हैं लेकिन दोनों का फल एक ही नहीं होता। तो एक भक्त तो असली भक्ति में होते हैं और दूसरा तो क्रोपति हो सकते हैं, हो सकते हैं यदि इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। लेकिन अगले जीवन इसका मतलब मर जाना, पुनः जन्म लाना, दुख। भगवान जरूर सबका इच्छा जो भक्ति करते हैं तो सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। आप सोच नहीं होना चाहिए। यदि आप सोचते कि मैं द्रौपदी होना चाहता हूँ, मैं पुष्य में भक्ति करूंगा और 10 साल के बाद तो अभी तक मैं केवल 10 रुपया खाता थी, तो क्रोध भगवान तो मुझको क्रोध नहीं दे, क्यों? तो आप शांत हो, विश्वास करो, आप क्रोध पाती होंगे भगवान का आशीर्वाद से। लेकिन कड़े इस जीवन में नहीं होगा तो आप क्रोध पाती होगा, तो आप क्रोध रुपया मिल सकते या क्रोध डॉलर भी मिल सकते, लेकिन उससे सुख शांति और कृष्ण प्रेमानंद नहीं बनेंगे। तो एक्चुअली ज्ञानी होना चाहिए और यही ज्ञान होना चाहिए कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति रूपम उत्तम भक्ति का यही लक्षण है कि उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, काम या ज्ञान से कोई भौतिक फायदा प्राप्त करना, तो यही शुद्ध भक्ति है। और भद्र अवस्था में भी या कनिष्ठ अवस्था में भी जो ऐसी भक्ति करते हैं तो भगवान तो विशेषकर ऐसे भक्तों को बहुत अनुग्रह करते हैं और ऐसे भक्त को सब सहायता देते हैं। जैसे कि वो भक्त आसानी से शीघ्र से भगवान के पास जा सकते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं येन मां कल्याणार्थे। जो प्रीति से मेरी भक्ति करते हैं, प्रेम प्रीति से श्री कृष्ण कहते हैं, तो वैसे भक्त को मैं सभी बुद्धि देता हूं जैसे कि वो तुरंत ही मेरे पास आ सके। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। बहुत लोग तो भक्ति में आते हैं क्योंकि मानसिक अशांति होते हैं या परिवार में समस्या होते हैं या तबीयत ठीक नहीं है, और यही सभी कारण के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद तो मालूम होना चाहिए कि ये सब भौतिक भार प्राप्त करने के लिए भक्ति करने का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। भक्ति करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उससे यदि हम प्रयास करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो उससे भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं तो भक्ति में ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप भक्ति करते हैं किंतु वो भक्ति शास्त्र में प्रवीण होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमको बहुत अनुग्रह करके श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितमृत भगवद्गीता इत्यादि सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव शास्त्र अनुवाद किया और बहुत सरल भाषा में भक्ति का सभी रहस्यों व्याख्या की। तो हम अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कौन भक्ति समझ में आया है। तो हमारा कर्तव्य है ये सभी पुस्तकों पढ़ना। तो साधारणतया हम भक्तों को कुछ चाप देते माला ज्यादा करो, एक माला करते हो अच्छा है, दो करो, दो करते हो अच्छा है, तीन करो, तीन करते हो अच्छा है, चार करो, सोलह करो, सोलह के ज्यादा भी करो और ये सब नियम पालन करो। लेकिन साथ ही साथ चाप चाप नहीं, धीरे धीरे लोगों को प्रेरणा करना चाहिए ज्यादा माला करो, साथ ही साथ भक्तों को बताना चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ना। क्योंकि यदि हम भक्ति ज्ञान मिलते हैं तो अपने आप हम उत्साही होंगे माला और दूसरे प्रकार की भक्ति करने। यदि हम समझते हैं कि इस कृष्ण भक्ति करने से हमारा परम कल्याण होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, तो अपने आप तो उत्साह माला करने के लिए, सेवा करने के लिए। और यदि हम माला करते हैं और सेवा करते हैं और दूसरी प्रकार की भक्ति करते हैं लेकिन ये ज्ञान हमारे हृदय में स्थिर नहीं होते हैं, तो कोई भी समय समस्या हो सकते हैं और हम सोचेंगे कि मैं इतना सब भक्ति किया फिर भी इतना समस्या होगा, ये भक्ति को चलना चाहिए, ऐसा होता है कि भक्तों भक्ति करते हैं बहुत उत्साही होते हैं, कुछ समस्या होते हैं, पूरा पैसा का नुकसान होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कभी कभी होते हैं कि एक भक्त है तो मतलब कहते हुए भक्त जो तिला के और मुंडन है और माला करते हैं लेकिन व्यवहार ठीक नहीं होते हैं और उसका व्यवहार देखने से ही और ऐसे भक्तों का व्यवहार से ही, तो जो भक्ति करते हैं तो सोचे कि भक्ति करने से ही लोग वैसे ही होते हैं और ठीक है मेरी भक्ति चाहिए, ऐसा होते हैं। दुबई में मतलब नहीं देखा नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन के पहले कुछ विवाद हुआ लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं होते। लेकिन कोई भी कारण हो सकते हैं, माया बहुत प्रभावशाली नहीं है और यदि कोई भक्ति में आते तो माया तो ज्यादा सोचते तो कैसे उसको खींचना और मेरे वश में वापस लाना। तो माया हमको बहुत परीक्षा देते हैं और यदि हम ज्ञानी नहीं होते, यदि हम नहीं समझते कि ये माया की परीक्षा है और जरूर ही यदि मैं भक्ति में स्थिर होऊंगा तो यही सभी समस्या होने के भी तो जरूर श्री कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। कौन दिया प्रति जाने ही नाम ही भक्त परमेश्वर। यदि शास्त्र और विश्वास है कि जो भी होते हैं वो मेरा पूर्व जन्म का कर्म फल है, ठीक है जो भी हो मैं भक्ति करता हूँ, भूख तो मुझको परेशान देते हैं और मेरा सब पैसा नष्ट हो गया, ठीक है जो भी हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यदि ऐसे विश्वास है, मजबूत विश्वास है, शास्त्रीय विश्वास है तो भक्तों तो कभी भी भक्ति नहीं चलेंगे और वो विश्वास से भगवान को बहुत प्रसन्न होते कि ये मेरा असली भक्त। तो इतना सा दुख होते हैं फिर भी मेरी भक्ति नहीं चलते, तो वो वास्तविक भक्ति। लेकिन जिसका विश्वास मजबूत नहीं है तो कोई भी समय भक्ति से भ्रष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए नवीन भक्तों को ये बताना चाहिए, ज्यादा माला करो, ज्यादा सेवा करो और शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप सब व्यस्त गृहस्थी है, तो जैसे मैं आलसी नहीं है, आप बहुत श्रम करते हैं, तो जैसे मैं आप इतना सा समय नहीं मिलता है शास्त्र पढ़ने के लिए, लेकिन समय निकालना चाहिए। इसलिए तो सब लोग जो बहुत मेहनत करते हैं तो टीवी भी देखते हैं, वो पार्टी भी जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सभी लोगों के पास समय है। तो टीवी मत देखो, पार्टी मत जाओ, समय रख दो शास्त्र पढ़ने के लिए, रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए। यदि आप बहुत बहुत ही व्यस्त है तो कम से कम 10 मिनट पढ़ो, और केवल श्लोक पढ़ना नहीं है तो श्लोक याद करना वो अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद वाले की वो श्लोक पढ़ने से मेरा तात्पर्य पढ़ना और महत्व जरूर, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं वो श्लोक, लेकिन एक्चुअली वो गीता श्लोक का अर्थ बहुत ही So, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, इसलिए प्रभुपाद का श्लोक और तात्पर्य के साथ पढ़ना चाहिए। तो अभी बोला कि लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, और उस समय नंद कुमार प्रभु मुझे बोला कि वो सही है, आपके पास भी समय नहीं है। तो अभी काफी बोला, शास्त्र पढ़ो बस। और एक अनुरोध आछे, आपने दया करिया किचु बांग्ला भाषा बोलू, तो बोलो।